الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمه صديقة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامہ خاتون کی کتاب مثالی ماں، مثالی عورت میں سے مثالی ماں کا موضوع پڑھ رہے ہیں، اور اس میں پیج نمبر 128 کے اوپر تھے. عنوان چل رہا ہے کہ بلوغت کی عمر کے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. تو اس میں اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ دے اسٹارٹ کوشچننگ دیئر بلیفس. ٹھیک ہے، دے اسٹارٹ کوشچننگ دیئر بلیفس. تو یعنی اس عمر میں جب بچے آتے ہیں نا، یعنی بلوغت کی عمر میں، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس عمر کے بچے عام طور پر عقائد کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، چنانچہ بلوغت کی عمر کے بچے دین کے بارے میں بھی بہت سوال پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل میں انگریزی میں جو ہے نا وہ غالباً اتنا دوسرا جملہ کہا ہوگا، لکھنے والے نے ایسے لکھ دیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ دے اسٹارٹ کوشچننگ دیئر بلیفس جو ہے نا، وہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب کہ بچوں کو کسی ایسے معاملے کے ساتھ واسطہ پڑے کہ جہاں پر ان کے عقائد کے خلاف بات ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، جیسے اسکول جب وہ جاتے ہیں، کالج جب وہ جاتے ہیں، تو وہاں پر ایسی باتیں جو ہے وہ ٹیچرس بول دیتے ہیں، یا بکس کے اندر لکھی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یا ان کے ساتھ وہاں پہ پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو کہ ان کو جو ہے نا وہ اپنے دین پر اعتراض ان کے ذہن کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو کوشچننگ دیئر بلیفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین پر اعتراض کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ جو اردو کی عبارت ہے اس میں لکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں سوال کرنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، تو دین کے بارے میں سوال کرنا شروع ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس عمر کا تقاضا ہے. اس عمر میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ذرا ان کی ذہن جو ہے وہ کھلتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، تو ان کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ ماں باپ کو جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہاں، دین کے اوپر اعتراض کرنا یہ بہت بری بات ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ بہت ہی یعنی ڈرنا چاہیے، اور اس کی بہت فکر کرنا چاہیے، اور اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے اولاد کے ذہن میں دین کے اوپر اعتراض پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے لیے ان کو بری جگہوں سے بچانا، برے ماحول سے، بری کتابوں سے، برے ٹیچرز سے، ٹھیک ہے، بچانا، برے دوستوں سے بچانا، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دین کے اوپر اعتراض پھر ان کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں. اچھا، چنانچہ بلوغت کی عمر کے بچے دین کے بارے میں بہت سوال پوچھتے ہیں، اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کون ہے؟ آپ اللہ اللہ کا اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ٹھیک ہے، کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ یہ چھوٹی عمر کے بچے اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ماں باپ کو اچھے سے دینا آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بنانے والے ہیں، خالق ہیں، تخلیق کرنے والے ہیں، ہم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں، یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کروانا. ٹھیک ہے، کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس جو ہیں یہ ساری کی ساری اصل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے، دین کے بارے میں، تو بھئی دین کیا چیز ہے؟ ہم دین کا لفظ اکثر جو ہے وہ آپ لوگوں سے سنتے ہیں، تو دین کیا چیز ہے؟ تو ان کو بتائیں کہ بھئی دین جو ہے نا وہ اس طریقے کو کہتے ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ایسے طریقے کے بس نہیں گزارے. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ دین کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، پہلے تو हमारे जो जद्दे अमजद थे आदम अलैहि सलाम, वो जन्नत में रहते थे, फिर अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के अंदर भेजा, तो दुनिया में फिर अल्लाह ताला ने उनको ये जिम्मेदारी लगाई कि इस दुनिया में ना तुमने उस तरीके पे अमल करना है जिस तरीके पे मैं चाहता हूँ, और जिस तरीके पे मैं नहीं चाहता हूँ उसके ऊपर तुम्हें अमल नहीं करना है। अगर उस तरीके पे अमल करोगे जो मैं चाहता हूँ तो फिर तुम वापस जन्नत में पहुंच जाओगे, और अगर उस तरीके पे अमल नहीं करोगे जो मैं नहीं चाहता हूँ तो तुम तो यानी अगर उस तरीके पे अमल करोगे जो मैं नहीं चाहता हूँ तो तुम जन्नत में वापस नहीं आ सकोगे। ठीक है, इस तरीके को जन्नत को दीन कहते हैं। ठीक है, और ये दीन हमें किसने बताया? ये दीन जो है वो अल्लाह के नबी आते हैं, वो इंसानों को बताते हैं कि ये है दीन। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही सादा अल्फाज में बच्चों को दीन के बारे में बताना। शरीयत के बारे में पूछने का मतलब क्या होता है कि शरीयत का कोई हुक्म, कि भाई अल्लाह ताला ने ये हुक्म क्यों दिया है। ठीक है, तो ये होता है शरीयत के बारे में सवाल करना। ठीक है, तो फरमाते हैं कि तो अगर बच्चे ऐसे सवाल पूछें तो आप उसको तब्दीली का हिस्सा समझें, उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए कि उसने ये सवाल क्यों पूछ लिया। ठीक है, तो कभी बच्चे जो है ना वो बड़े सादगी के साथ ऐसे सवाल पूछते हैं, और कभी बच्चे जो है वो ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं जो कि बज़ाहिर एतराज रखते हो लेकिन असल में वो एतराज नहीं है। ठीक है ना, बज़ाहिर एतराज रखते हो असल में वो एतराज नहीं है, तो उसके ऊपर भी नाराज नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, और यानी बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, जवाब देने के लिए फिक्रमंद जरूर होना चाहिए, लेकिन परेशान, ओह मेरे बच्चे ने ऐसे सवाल क्यों कर लिए, तो दीन के ऊपर एतराज है। ठीक है, नहीं, वो अपने उम्र की वजह से ऐसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है ना, हाँ, अगर उसका वास्ता पड़ रहा है ऐसी किताबों से, ऐसे लोगों से, ठीक है, जो कि दीन के खिलाफ होते हैं, ठीक है, अब वो अगर कोई ऐसा एतराजी सवाल कर रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, उसको हल्का ना समझें, क्योंकि वो जो ये सवाल कर रहा है ना, ऐसा बच्चा जो कि एक्सपोज्ड है, वो जो ये सवाल कर रहा है वो मोस्ट लाइकली वो भोलेपन में ये सवाल नहीं कर रहा, बल्कि उस वो ये सवाल कहीं से सुन करके आया, कोई ऐसी बात उसने पढ़ी है, कोई ऐसी बात उसने सुनी है कि जिसकी वजह से उसके दिल में ये एतराज पैदा हुआ है। अब इसको लाइटली मत लें, अब लाइटली ना लेने का मतलब ये नहीं कि अब उसको मारपीट करके जो है वो चुप करवा दें, नहीं, बल्कि फिक्र करें कि मेरे बच्चे के जहन में ये सवाल कैसे आ गया, वो गलत जो सोर्स है उस सोर्स का रास्ता मैं बंद करूं। ठीक है ना, जहां से कि उसको इस किस्म के जो है वो दीन के ऊपर एतराजी बातें सुनने को मिल रही हैं, मैं उससे उसको बचाऊं, उससे उसको दूर करूं। ठीक है, ये बातें सुन तो ली हैं आपने, लेकिन टास्क खत्म होगी ना फिर, उसके बाद सब चट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो तकरार अगर नहीं करेंगी तो ये यानी जन्नत जहन्नुम वाली बात है, जिसमें कि आपकी जिसकी बुनियाद पर आपकी औलाद जहन्नुम में जा सकती है और आपकी औलाद जहन्नुम से बच सकती है। तो ये अगर आपने समझी नहीं है ना और आपने याद नहीं रखी है तो फिर आप अपनी औलाद को बचा नहीं सकेंगे, और अगर औलाद जहन्नुम में चली गई ना तो फिर मोस्ट लाइकली वो आपको भी साथ लेकर के जाएगी, अकेली नहीं जाएगी, वो आपको साथ लेकर के जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको बात नहीं समझ में आई है तो रिकॉर्डिंग अल्लाह ताला ने अवेलेबल करी होती है, तो उस रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुने और कुछ समझ समझ करके उस पर अमल करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि दिस इज समथिंग वी आर अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑल एक्सपोज। ठीक है, अभी कल जो है ना, ये आज इज पाकिस्तान स्टडीज, मुताले पाकिस्तान जिसको कहते हैं, पाकिस्तान स्टडीज की किताब पढ़ रहा था जो कि यानी ओ लेवल्स के बच्चों को पढ़ाई जाती है। ठीक, अब ओ लेवल्स तो सबने करवा, पाकिस्तान बोर्ड जो है वो तो उसके तो एग्जाम का सिस्टम ही इतना मुश्किल है, बहुत ये है वो पता नहीं, बहुत सारी बातें होती है, अब सब जो है वो ओ लेवल्स करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ओ लेवल्स के अंदर जो किताबें होती हैं, ये वैसे कोई पाकिस्तान बोर्ड की किताबें कोई वो भी कोई सही नहीं होती है, ओ लेवल्स की किताब है और भी ज्यादा। ठीक है, तो उसके अंदर जो पाकिस्तान स्टडीज की किताब है तो वो पहली बात तो लिखी लिखी हुई जो है ना वो किसी नॉन पाकिस्तानी की होती है, किसी ब्रिटिशर की, किसी नॉन मुस्लिम की लिखी हुई किताब, बहरहाल चाहे जो भी हो उसने भी लिखी हो, तो उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान स्टडीज की किताब के अंदर वो आखिर में जो है वो चैप्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स। ठीक, पॉपुलेशन के बारे में, तो अब वो पॉपुलेशन के बारे में कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी जा रही है, बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए तो उससे जो है वो जो जो मुल्क के रिसोर्सेज होते हैं तो उसके ऊपर इतना बोझ पड़ जाता है, और कैसे होगा, और इतने लोग जब दुनिया में आ जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से और कमाएंगे कैसे, और ये कैसे होगा और वो कैसे होगा। ठीक है, अब ये सारी बातें जो है ना वो उस चैप्टर के अंदर जिसमें इतनी तफसील उन्होंने लिखी हुई है, इतने चार्ट्स, इतने ग्राफ्स, इतने स्टैटिस्टिक्स और इतने ओपिनियंस और इतना कुछ सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, तो उसके अंदर जो है वो उन्होंने फिर दीन को भी बीच में घसीटा हुआ कि ये जो है ना वो पाकिस्तान का कल्चर भी है कि ज्यादा बच्चे हों तो ज्यादा अच्छे, अल्लाह के बंदे ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है, ठीक है, कि ऐसी बीवी से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करने की जिसके अंदर सलाहियत हो, यानी जिसकी सेहत वगैरह अच्छी हो, ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाहियत हो, कि मैं कयामत के दिन तुम्हारी कसरत के ऊपर फख्र करूंगा, अपनी उम्मत की कसरत के ऊपर फख्र करूंगा। ठीक है ना, अब ये जो पॉपुलेशन का जो पूरा का पूरा चैप्टर है जो कि आपके 14 15 16 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, 14 15 16 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियां जो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर ये सारी बातें पढ़ रहे होते हैं, तो अब क्या ये बातें जो है नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान के खिलाफ नहीं जाती हैं? ये क्या बातें जो है वो इस बात के खिलाफ नहीं जाती हैं कि नबी के अल्लाह ताला खालिक हैं और अल्लाह ताला ने जो है वो रिस्क जो है वो अपने जिम्मे लिया हुआ है, राइट? ये सारी बातें उसके खिलाफ नहीं जाती हैं। अब बच्चा जो ये चैप्टर पढ़ रहा है, उसको पढ़ाने वाला भी कोई जो है वो दीनदार और अकल समझ रखने वाला, अब बहुत सारे तो टीचर दीनदार भी हो जाते हैं लेकिन इतनी समझ नहीं होती उनके अंदर के बच्चों को ये बात भी समझा सके कि बेटा इसके अंदर क्या बात गलत लिखी हुई है। दीनदार है इसका मतलब क्या होता है, दाढ़ी है जी इनकी, नमाजें पढ़ते हैं जी, औरत है तो जी वो हिजाब पहन लेती हैं या जो है बुरका वुरका पहन लेती हैं, बस ये है दीनदारी हमारे, इससे ज्यादा इतनी समझ नहीं होती कि ये जो पाकिस्तान स्टडीज के अंदर जो इन्होंने चीजें लिखी हुई हैं ये फैक्चुअली भी गलत हैं और इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर जो इतना बुरा हाल है वो लोगों की तादाद की वजह से बुरा हाल है या लोगों की हरकतों की वजह से बुरा हाल है, राइट? हरकतों को देखते नहीं हो अपनी, और जो है ना वो बस तादाद के ऊपर जो है वो तुम्हें तुम्हें गोरे साहब ने जो पट्टी पढ़ाई भी है कि वहां भी तादाद ज्यादा हो जाएगी लोगों की तो इस वजह से रिसोर्स मैनेज नहीं हो सकेंगे, और तादाद ज्यादा हो जाएगी तो इस वजह से खराबी हो जाएगी, है ना, वही बात जो है वो तुम अपनी पूरी की पूरी नस्ल को पढ़ाए चले जा रहे हो। तुम क्या पढ़ा रहे हो बल्कि असल में गोरा साहब डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं तुम्हारी नस्ल को, चाहे वो किताबों की शक्ल में पढ़ाए, चाहे वो ब्राउन अंग्रेजों की शक्ल में पढ़ाए, ये टीचर्स जो है वो सारे के सारे हमारे ब्राउन अंग्रेज ही होते हैं ना, ठीक है। तो अब है बजाहिर जी पाकिस्तान स्टडीज पढ़ रहे हैं भाई, पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में और पाकिस्तान का हिस्ट्री तो अलग ही पूरा का पूरा मौजूद है, हिस्ट्री के अंदर तो और पता नहीं कितनी खराफात होती है, खराफात शामिल होती है इवन ज्योग्राफी की किताब के अंदर, ये पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है ना। तो अब हम कितने जो है वो इनोसेंट बने हुए होते हैं कि जी इसमें कौन सी बुरी बात हो सकती है ना, ये तो खाली फैक्ट्स हैं, ये तो खाली जो है वो फिगर्स हैं जो कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जाहिर है और अच्छा ही है कि इतना ज्यादा तफसील में और इतनी ज्यादा चीजें जो है उनको पढ़ा रहे हैं, ये नहीं देख रहे होते कि वो बुनियादी अकायद से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते, दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात से जो है वो टकरा रहे होते हैं, उनके खिलाफ जो है वो पूरी की पूरी जाके बात कर रहे होते, ठीक है। तो अब ऐसा बच्चा 14 15 16 साल का बच्चा जो कि इस तरह की चीजें जो है वो आपके किताबों के अंदर पढ़ रहा है और टीचर्स जो है वो सुन रहा है, अब वो दीन के ऊपर एतराज नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर एतराज, उसने तो करना है एतराज, और उसका कसूर किसका है, बच्चे का इतना कसूर नहीं है बच्चे का, बल्कि वो तो बालिग भी शायद नहीं हुआ वो बच्चा अभी तक, ठीक है ना, कसूर किसका है, सारा का सारा वालिदैन का कसूर है, ठीक है, कि उनको इन चीजों की परवाह ही कोई नहीं कि वो बच्चा हमारा क्या पढ़ रहा है किससे पढ़ रहा है, बच्चे के ऊपर गुस्सा होना शुरू हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, इस पे गुस्सा ही होंगे मैंने उसको बच्चे को कहाँ पे उठा करके धकेला हुआ है, किस माहौल के अंदर उसको भेजा हुआ है, किस किस्म की किताब है जो मैं उसको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, इसके ऊपर हम गुस्सा नहीं होंगे अपने ऊपर, क्योंकि वो अपने ऊपर कौन गुस्सा होता है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है, कभी कभी बच्चे इतने सवाल पूछते हैं और हम आंसर दे चुके होते तो बहुत डीपली जाने लगते, जहां जाके बच्चे कुछ गलत बात मुंह से निकाल लेते, तो इस टाइम कहाँ पे रुक जाना चाहिए? इस टाइम कहाँ पे रुक जाना चाहिए? भाई यहीं पे रुक जाना चाहिए जहां पे वो कुछ गलत बात नहीं सुना निकालने पाए। असल में जवाब देने का एक तरीका होता है, वो तरीका हमें आता नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से जो है ना, वो हम जवाब जो दे रहे होते हैं ना, तो वो हमारे जवाब से जो है ना, वो और सवाल पैदा हो रहे होते हैं। हम सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे रहे होते बच्चों, ठीक है? सेटिस्फैक्टरी, जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए, जिससे कि वो मुतमईन हो जाए। हमारा इल्म कम होता है, हमारी समझ कम होती है, तो इस वजह से ना हम ऐसे जवाब दे रहे होते हैं कि जिससे मजीद सवाल पैदा हो रहे होते हैं। अब ये एक अंदाज में देखा जाए तो एक अच्छी बात भी है, अगर टीचर जो है ना, वो यानी जवाब देने वाला जो है, वो वाकई चाहता है कि मेरा जो बच्चा है वो और सवाल करे, मैं उसके और जवाब दूंगा, इसका इल्म और बड़ा होगा, वो तो एक अलग बात है, अच्छी नीयत है वो, इल्म यानी इल्म सिखाने की, ये एक अच्छी अच्छा तरीका होता है कि आप जो है ना, वो जवाब देने के साथ साथ काउंटर को क्वेश्चंस भी करें, मजीद हम उसकी बात नहीं करें, वो एक अच्छी तरीका है देने का। हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि उसने आपसे सवाल किया है, अब आप उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, तो अब वो आगे से सवाल कर रहा है, तो भाई अब जाहिर सी बात है आपके जवाब का मसला है ना, कि आपने उसको अच्छे से जवाब क्यों नहीं दिया। तो सेटिस्फैक्टरी आंसर देना, उसको मुतमईन कर देने वाला आंसर देना, ये भी तो जरूरी है ना, ठीक है? तो ये भी देखने के, भाई हो सकता है आपसे ये गलती हो रही हो, आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं, तो अपने इल्म को बढ़ाने की कोशिश करें, खुसूसन बच्चों से रिलेटेड जो इल्म है ना, तो उसको जो है वो माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने इल्म बढ़ाए, ठीक है? ताकि बच्चों को वो सेटिस्फाई कर सके कि सवाल आपको इनसे ज़्यादा। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है कि मेरी 5 साल की बच्ची जब बेपर्दा या दुपट्टे के बगैर किसी औरत को देखती है तो कहती है कि ये गंदी आंटी है ना, क्योंकि बुरका नहीं पहनती या दुपट्टा नहीं लेती, इसे कैसे समझाऊं? जैसे आपने फरमाया था कि नफरत गुनाह से करनी है, बंदे से नहीं करनी। ये जो गंदी आंटी का लफ्ज है, ये क्या उसके ऊपर वही से नाजिल हुआ है, आपकी 5 साल की बच्ची के ऊपर, राइट? ये लफ्ज उसको कहाँ से मिला है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारे घराने को भी जानती हैं, ठीक है ना? तो हमारे यहाँ भी बच्चे जो हैं वो भी 5 साल की उम्र से गुजर करके ही बड़े हुए हैं ना, और अभी सबसे छोटी वाली जो है वो तो कुछ अर्सा पहले ही 5 साल की थी, राइट? और पर्दा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि पर्दा जो है वो हमारी खवातीन करती हैं और पर्देदारों के दरमियान ही रहती हैं। लेकिन हमारे किसी बच्चे ने, मुझे तो नहीं याद पड़ता ना, मैंने कभी किसी से सुना ये मुझे शिकायत करते हुए, ना मेरी वाइफ ने मुझे कभी बताया कि हमारी बच्ची ने किसी बेपर्दा औरत को देख करके कहा हो कि ये गंदी आंटी। क्यों क्यों नहीं कहा? शायद उसकी ये वजह हो कि उसने कभी हमें नहीं सुना ये बात कहते हुए कि ये गंदी आंटी या ये गंदे अंकल। तो भाई बच्चे जो हैं, ये अल्फाज तो कहीं से पिक करते हैं ना, तो उन्होंने कहाँ से पिक किया ये लफ्ज किसी के बारे में इस तरह से बोलना? शायद आप बोलती हो, ऐसा तो नहीं है कि आप बोलती हो या आपके हस्बैंड कभी इस तरह की बात बोल देते हो, या आपके जो है वो कोई और करीबी जिनसे बच्चों को ज्यादा वास्ता पड़ता है वो इस किस्म की बात कर देते हो, ठीक है? तो उसने कहीं ना कहीं से तो ये टर्म सीखी है ना, तो उसको आप क्या समझाएंगी? पहले अपने आप को समझाएं या उनको समझाएं जो कि इस तरह की बातें करते हैं, कि भाई ऐसे नहीं बोला करते लोगों के बारे में कि ये गंदा है, ये गंदी है, ये गंदा है, ये टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल नहीं करनी हमने लोगों के बारे में ना, ठीक है? तो आपका बच्चा या आपकी बच्ची जब अब आइंदा कुछ अरसे तक ये टर्म किसी बड़े से नहीं सुनेगी ना, वो खुद ठीक हो जाएगी, वो भूल जाएगी ये वाली इस टर्म को, वो आइंदा नहीं बोलेगी किसी के बारे में कि ये गंदी आंटी, ठीक है? तो बच्चा जब भी कोई गलत काम करे ना, तो उसूल याद रखें, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से माफी मांगे कि अल्लाह मुझसे कोई गलती हुई है कि जिसकी वजह से मेरा बच्चा जो है ना गलत काम कर, अल्लाह ताला से सबसे पहले माफी मांगे, फिर उसके बाद देखना शुरू करें कि मेरी क्या गलती हुई। पहले तो अल्लाह से गलती की माफी मांगे ना, अनकंडीशनल, अल्लाह बस मेरी गलती है, आप मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद देखना शुरू करें, सेकंड नंबर पे देखना शुरू करें क्या गलती है, क्या गलती मैंने करी है कि जिसकी वजह से मेरा बच्चा जो है ना वो ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह आप मुझे वो गलती बता दीजिए, वो समझा दीजिए, ताकि मैं उस गलती की और मुझे उसकी बल्कि ताकि नहीं बल्कि कहें कि और मुझे उसकी इसलाह की तौफीक भी अता फरमा दीजिए। ठीक है ना, इसलाह की तौफीक भी आप ही अता फरमा दीजिए, लेकिन फिर साथ जो है ना वो उसको दूर करने की मेहनत के अंदर ही लग जाए। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट कि फिर इस उम्र में बंदे के दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का जो सबसे अगला हिस्सा होता है जो मंतकी सोच सोचने का काम अंजाम देता है, ये ज्यादा नशो नुमा पा रहा होता है। चूंकि ये हिस्सा तेजी से तरक्की पाता है, लिहाजा ब्रेन स्टार्ट्स फ्लक्चुएटिंग ऑन यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल। ब्रेन स्टार्ट्स फ्लक्चुएटिंग ऑन यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल, यानी दिमागी इंतशार की कैफियत होती है कि कर गुजरो या फिर हार मान लो। ठीक है, यानी अगर तुमने नहीं किया तो फिर तुम हार जाओ। तो यानी जिसको कहते हैं ना जज्बातियत, ठीक है, कि बस जीतना है क्योंकि अगर मैं नहीं जीता तो इसका मतलब ये कि मैं हार गया। ठीक है, तो ये इस एज के अंदर एक तो फिजिकल डेवलपमेंट ऐसी हो रही होती है बच्चे की। ठीक है, तो उस वजह से भी ऐसा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट की वजह से भी वो मोड इस मोड में बचा जा रहा होता है कि बस जिसमें ना वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आर या पार। ठीक है, या तो आर होगा या पार होगा। ठीक है, यानी पार होगा वरना तो फिर आर होगा, बस दरमियान की तो कोई चीज ही नहीं है। एतदाल पसंदी, नरम मिजाजी, तहम्मुल, ये सारी चीजें फिर उस वक्त नहीं होती। अच्छा, फिजिकली की बात यहाँ पे नहीं कर रहे कि फिजिकली वो बहुत तेज हो जाते हैं, फिजिकली बहुत जो है ना वो यानी तहमुल खत्म हो जाते हैं, नहीं, यहाँ पर सोच की बात हो रही, सोच के एतबार से भी ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल, या ये के जीत या हार, जीत या हार, जीत या हार, बस। ठीक है, तो ऐसा होता है इस उम्र के इस हिस्से के अंदर, लेकिन साथ साथ जो बैरूनी अनासर होते हैं ना, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, वो फिर उसको मजीद एक्सप्लॉइट कर रही होती है, मजीद एक्सप्लॉइट कर रही होती है। क्या मतलब कि आपने देखा होगा कि ये जो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि बच्चों के लिए बनाते हैं ये इंडस्ट्री वाले, ठीक है ना, इस उम्र के बच्चों के लिए, तो उन प्रोडक्ट्स के जो एडवर्टिजमेंट्स होते हैं ना, उन एडवर्टिजमेंट्स के अंदर वो ऐसे ही दिखाते हैं कि जैसे कि ये मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल जो है ना वो ऐसी सोच दिखा रहे होते हैं बच्चों को कि जो कि उनको अपील कर रही होती है ना। तो ये जो एडवर्टिजमेंट्स होते हैं, घर का ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे जो है वो आपके इन एडवर्टाइजमेंट से एक्सपोज ना हो रहे हो। ठीक है ना, उनको जो है वो ये चीजें देखने को और सुनने को ना मिल रही हो, क्योंकि अगर वो ऐसी चीजें देखेंगे और सुनेंगे ना, तो वो उनका जो एक तबीयी एक चीज उनके अंदर उम्र की वजह से पैदा हुई है, ये मजीद भड़केगी। क्योंकि वो यानी बाकायदा ये जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती है ना, जो एड्स बनाती हैं कंपनियों के लिए, इनके अंदर यानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उन्होंने एम्प्लॉय किए हुए होते हैं, उन्होंने ये बातें जो है वो बकायदा रिसर्च करके सीखी भी होती हैं कि हमने किसी के माइंड को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उसको जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए माइल करना है। ठीक है ना, और बच्चों को वो ऐसे माइल करते हैं कि बच्चे जो है ना फिर वो जिद के ऊपर आ जाते हैं और माँ बाप से जो है ना वो मनवा करके छोड़ते हैं कि उनको ये चीज खरीद करके दी जाए। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट ये कोई सादा सादा लॉ किस्म के लोगों ने नहीं बनाए हुए होते हैं, और ये कोई भोली भाली हंसी मजाक वाली बातें जो कि ऊपर ऊपर से हमें बड़ा भोला भाला हंसी मजाक लग रहा होता है, ये ऐसा नहीं होता। ये ऐसा होता है कि सुनने वाला, देखने वाला अब उनकी प्रोडक्ट को खरीदे बिना रह ना सके, या कम से कम अगर वो खरीद अगर नहीं सकता ना, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है, इतने वसाइल नहीं है, तो अब जो है ना वो उन पैसों को कमाने की मेहनत पे ना लग जाए कि जिससे कि वो उसको खरीद सके, ठीक है, या अगर कमाने की भी मेहनत में नहीं लग सकता तो कम से कम इस प्रोडक्ट की जो सोच है वो उसके जहन के ऊपर हर वक्त गालिब रहे, कम से कम सोच हर वक्त गालिब रहे। इसका क्या फायदा होगा उनको, प्रोडक्ट बनाने वालों को, कि जैसे ही इसके पास पैसे आएंगे वैसे ही ये जाके खरीदेगा। तो वो ऐसा एड बनाते हैं कि वो फिर आप भुला नहीं सकते उस एड को, आपके यानी आसाब पे वो एड सवार हो जाता है, वो मैसेज सवार हो जाता है। जिंगल्स, जिंगल्स कहते हैं ना ये जो एड्स के अंदर छोटे छोटे से इन्होंने गाने बनाए हुए होते हैं, राइट। 40 साल गुजर जाते हैं ना, 50 साल गुजर जाते हैं, आपको कुरान की कोई आयत जो है वो भूल जाती है, लेकिन वो जिंगल्स नहीं भूलते आप, राइट, जो बचपन में सुना। अब मुझे अभी तक याद है वो पाकिस्तान टीवी के ऊपर जो एड आते थे, क्या था वो, बड़े बहुत सारे याद है, उनमें से एक वो है बड़ा, हाँ वो प्रिकली हीट पाउडर कोई था, ठीक है, तो उसका जो उसके एक एक लफ्ज मुझे याद है अभी तक, मेरी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, और वो सुना होगा शायद 15 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में, वो नहीं भूलता, ठीक है। तो इतनी पावर है एडवर्टीजमेंट की, ठीक है ना। अब जाहिर खैर काम के लिए, खैर के काम के लिए तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते उसको, वरना कुरान मजीद की आयत जो है ये क्या है, ये एडवर्टीजमेंट है, कुरान मजीद की आयात ये अल्लाह ताला की एडवर्टीजमेंट है, लेकिन उसके साथ तो हमारा कोई शगफ नहीं, उससे तो हम दूर दूर रहते हैं, और टीवी और इन एड्स के साथ जो है वो हमने खुद को भी चिपकाया हुआ होता है, अपने बच्चों को भी चिपकाया हुआ होता है, ठीक है। तो अब जो है ना वो ऐसी ऐसी चीजें, अब मैंने किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया, हाँ, कि बच्चों में यानी अच्छा खासा दीनदार माहौल ना, वहां पर जो है वो क्या है कि बच्चों को खेल खेल का ना कोई टूर्नामेंट वगैरह कोई करवा रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने जो है वो क्या बना दिया, बगैर म्यूजिक के एक गाना, क्योंकि दीनदार है ना, म्यूजिक तो जो है वो तो जायज नहीं है, तो उसके साथ उन्होंने एक गाना बनाया बगैर म्यूजिक के। गाना क्या था, जीत की लगन, जीत की लगन। और वो बच्चा जो है वो खेल रहा है, बड़े बहुत ही मेहनत कर रहा है, और उसके साथ पीछे बैकग्राउंड में क्या गाना चल रहा है, अब वो उसके जीत की लगन के अलावा मुझे कोई इसका लफ्ज याद नहीं है, लेकिन जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, और इतना एम्फेसिस के साथ, इतना ताकीद के साथ वो उसको सुना रहे हैं, यानी क्या मतलब जीत की लगन, अब वो जीतना है नहीं तो आपकी यानी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी, आपकी जो है वो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब उसके लिए जो है वो क्या होता है, फिर जाहिर सी बात है जब जीत की लगन हो जाए तो फिर उसके बाद जो है वो आपने अगले बंदे को तो किसी खातिर में नहीं लेकर के आना, अब उसके लिए दूसरे को ठुड्डे मारने हैं, फाउल करना है, किसी को जख्मी करना है, किसी के ऊपर से रोंद करके गुजर जाना है, कुछ भी कर जाना है, बस जी जीत की लगन है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है ना फिर ये बाकायदा गाने बनाए जाते हैं, बाकायदा एड्स बनाए जाते हैं, बाकायदा ऐसे स्लोगन्स बनाए जाते हैं कि जिनसे वो जो तबीयी तौर पर बच्चे के अंदर ये तब्दीली आ रही होती है इसके ऊपर कैपिटलाइज किया जाए, ठीक है, और इसके जरिए से सिर्फ पैसे नहीं कमाए जा रहे होते, इसके जरिए से शर भी फैलाया जा रहा होता है, शर को बाकायदा बढ़ाया जा रहा होता है, ठीक है ना। पैसे कमाना शैतान का मकसद नहीं है, ये बात याद रखें, हम समझते हैं ना कि जी काफिर जो भी गलत काम करते हैं ना वो सिर्फ पैसे कमाने की खातिर करते हैं, तो शर की असल जड़ किधर है, काफिर, काफिर इंसान ये है असल में शर की जड़, तो चलो अगर वो शर की जड़ होते तो उनको तो पैसे की जरूरत है, वो तो पैसे के भूखे हैं। व्हाट अबाउट शैतान, शैतान को पैसे की जरूरत है, शैतान को डॉलरों की जरूरत है, शैतान को रियालों की और रुपयों की और पाउंड्स की जरूरत है, नहीं, शैतान को कुछ नहीं चाहिए आपके डॉलरों से, शर की जो जड़ है वो काफिर इंसान नहीं है, शर की जड़ जो है वो शैतान है, तो शैतान जो ये काम करता है ना वो पैसे कमाने के लिए नहीं करता, शैतान जो ये सारे काम करता है वो शर फैलाने के लिए करता है, वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को बर्बाद करने के लिए काम करता है। ठीक है ना। ये बात क्यों करी जा रही है, ये बात इसलिए करी जा रही है कि हम हर जगह ना पैसा ढूंढते हैं कि पैसे का फायदा होगा, पैसे का फायदा होगा, पैसे का फायदा होगा। तो अगर हमें कहीं पे नजर आए कि जी यहाँ पे पैसे का कौन सा फायदा है, तो हम समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि शर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उनको पैसे का कोई फायदा नहीं हो रहा। इस वजह से बात समझाई जा रही है कि नहीं, अगर आपको कहीं पे 2 टके का फायदा नजर नहीं भी आ रहा है, लेकिन वो चीज जो है वो या तो शरीयत के खिलाफ है या वो इंसानी फितरत के खिलाफ है, इंसानी फितरत के खिलाफ है, बजाहिर आपको शरीयत का कोई हुक्म टूटता हुआ नजर नहीं भी आ रहा, लेकिन इंसानी फितरत के अगर वो खिलाफ है ना, तो उससे दूर रहना है, उसके अंदर शर है, क्योंकि वो शैतान ने करवाया भाई हमारा। ठीक है, चले मजीद हम आपका वक्त नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम रोकते हैं, बाकी चीजें जो है अगली क्लास के अंदर टॉपिक से पढ़ेंगे। अच्छा 1 मिनट, ये सवाल आया बच्चा, बच्चे का रूटीन किस तरह रखना चाहिए, किस तरह उसको अच्छी चीजों में बिजी रखें, किस तरह उसको अच्छी चीजों में बिजी रखें। भाई अच्छी चीजें जब होंगी आपके सामने कि इसको क्या 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 करवाना है, तो फिर वो उसके अंदर बिजी रहेगा ना। पहली बात तो ये कि बुरी चीजों को एलिमिनेट करें, बुरी चीजों को एलिमिनेट करें, ठीक है ना। टीवी है, गैजेट्स हैं, और जो जो फजूल के स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं जिनका फायदा नहीं होता, वीडियो गेम्स फॉर एग्जांपल, या कमर्शियल स्पोर्ट्स, इन चीजों को बच्चे की जिंदगी से बिल्कुल खत्म करें, निकालें, अपने घर से निकालें, ठीक है। और बच्चों को ऐसी दूसरे घर भी ना जाने दें कि जहां पे इस किस्म की चीजें हैं, ठीक है। तो बुराई का खात्मा पहले करना होता है, जैसे कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अखलाक जमीमा का जिक्र पहले किया है, ठीक है। फिर उसके बाद अखलाक हमीदा यानी अच्छे काम, ठीक है। तो अब अच्छे कामों को जो है वो फिर ले करके आए अपने घर के अंदर, अपने बच्चे की जिंदगी के अंदर, ठीक है। जब वो आप ले करके आ जाएंगे ना, तो फिर बच्चा जो है वो आपको फिर हाथ पकड़ करके उसको काम नहीं करवाने पड़ेंगे, बल्कि वो उन बच्चे कामों के अंदर खुद ही बिजी होगा, ठीक है। लड़कों के अच्छे काम अलग होते हैं, लड़कियों के अच्छे काम अलग होते हैं, तो फिर वो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन बाकी काम बच्चा खुद करेगा, ठीक है। तो आपका सवाल कैसे की बजाय जो है ना वो क्या, ये होना चाहिए था आपका सवाल, कि कौन से अच्छे काम, क्या अच्छे काम, ठीक है। तो उसमें बुरे कामों का तो आपको बता दिया, क्योंकि बुरे कामों को खत्म करना पहले जरूरी होता है। अब उसमें कौन से अच्छे काम, क्या अच्छे काम, ये एक अलग तफसील है इसके अंदर, उसके लिए भी हमारे क्लास में वक्त नहीं है, यहाँ पे रोकते हैं। वा आखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलाम अलैकुम।